Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav and with me is my co-anchor Sparsh Saxena.
धन्यवाद वैभव. नमस्कार. घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और हम आप सभी श्रोताओं का आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं. आज के संक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नज़र डालेंगे और साथ ही चर्चा भी करेंगे. आज चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक कुमार बिजॉय. कुमार जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
धन्यवाद.
और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव.
Absolutely, Sparsh. Beginning with the headlines, domestic benchmark indices end with marginal losses. Sensex ends flat. Nifty settles below 24,400. Cabinet approves two railway projects of more than 6,750 crore rupees. Also approves establishment of 1,000 crore rupees venture capital fund for space sector. And global crude prices rise amid concerns of a potential oil supply disruption.
घरेलू बेंचमार्क सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स सपाट बंद हुआ और निफ्टी 24,400 के स्तर के नीचे. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,750 करोड़ रुपए से अधिक की दो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी. साथ ही अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1,000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को भी मंजूरी दी. और संभावित तेल आपूर्ति में बाधाओं की चिंता के कारण कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी. सबसे पहले नजर डालते हैं आज के बाजार पर. घरेलू बेंचमार्क सूचकांक आज लगातार चौथे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 17 अंक की मामूली गिरावट के साथ 80,065 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 36 अंक की गिरावट के साथ 24,399 पर रहा. विस्तारित बाजार में भी कमजोरी देखने को मिली. बीएससी मिड कैप 0.13% गिरा जबकि स्मॉल कैप लगभग आधा प्रतिशत से अधिक के नुकसान में रहा. सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 19 कंपनियों के शेयर आज फायदे में रहे.
The domestic benchmark indices today ended marginally lower, extending their losing streak to fourth consecutive session. The BSE Sensex ended flat with a fall of 17 points to close at 80,065, and the NSE Nifty shed 36 points or 0.15% to settle at 24,399. The broader market at Bombay Stock Exchange also ended in negative territory. The mid-cap index lost 0.13% and the small-cap index declined over 0.5%. In the Sensex index, 19 out of 30 companies ended in positive territory. In the top gainers, Ultratech Cement climbed more than 2.5%, Mahindra and Mahindra gained over 1.3%, and Titan added 1.2%. Conversely, in the laggards, Hindustan Unilever plummeted over 5.8%, Nestle shed over 2.8%, and ITC fell 1.8%. In the sectoral indices at the BSE, 11 out of 20 sectors logged losses, and the top laggards FMCG declined over 2.5%, realty slipped 1.2%, and telecommunication was down by 1%. In the top gainers, BankX rose more than 0.5%, utilities, healthcare and power added over 0.4%, and financial services gained 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 1,584 companies advanced and 2,349 declined, while 100 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 30 companies hit their 52-week high, while 88 hit their 52-week low.
Kumar ji, agar aaj ke bazaar pe nazar dalein, to sabka sawal ek hi hai ki FMCG. Ye bada charcha ka vishay bana hua hai ki aaj itni giravat dekhne ko liye, khas taur pe uske kai large cap stocks jo the, usme अधिकतम 7% से भी ज्यादा की गिरावट आई. तो इसके पीछे क्या आप कारण देख रहे हैं? क्या सप्लाई में कोई दिक्कत है या रिजल्ट सीजन चल रहा है? क्या आप कारण बनता देख रहे हैं?
FMCG पिछले कुछ दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस में था, दैट हैड गिवन ए गुड रिजल्ट ऑल्सो
जी.
बट अभी जैसे कुछ रिजल्ट जो सामने आए हैं, वो रिजल्ट उनके जो इस क्वार्टर के हैं वो बहुत अच्छे, जितना एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से नहीं रिजल्ट आया है, एंड दैट हैज़ इफेक्टेड इट. तो ये जो FMCG का सेगमेंट है, ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल सेगमेंट है. इस गिरावट से बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो एक कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये मूवमेंट कोई बहुत माने नहीं रखता है.
तो आपके हिसाब से ये खरीदारी का सही समय?
सही समय.
एब्सोल्युटली. सो बिजॉय जी, कैन वी टेल आवर मार्जिनल और आवर स्मॉल इन्वेस्टर्स और द रिटेल इन्वेस्टर्स हु आर देयर इन or the ones who are trying to be in the market for a longer term, that the FMCG sector will remain good, and this could be corrected in just a little while because the festive season is just around the corner, and consumerism, the consumers that will consume all these products from the FMCG companies will give these companies huge benefits in the days to come. The profits will drive these market shares up.
Very true. You yourself have said that festive season is in corner, and especially, you know, we are a country of festivals, but when it comes for Deepavali, it is a season of purchase also.
Absolutely.
And we all know that generally white goods, the bigger durable capital items, the huge investments are there in this, and people generally wait for a year to buy during these seasons only. So that way, if you look, certainly it is a very big season, and that is this time also it is expected it is going to be bigger in nature, and more investment is expected in that field also. So this what I personally feel, two things. First, it has got a bright future. It will also be looking into that when you are investing and being investor, don't look into, you know, 1 month, 2 months, 3 months. At least 3 years of investment should be there. If bigger than that you are going to make it, understand some even general selection of the script will help you to give much better return, sometime double than what normal term deposit returns in the banking sector is there.
Absolutely. Bijoyji, too many uncertainties going around at the time in the world. There are conflicts going around, and then the oil sector is going through uncertainties on whether it was the weak demand from China or disruptions in the supply that we're talking about right now. The investor which you're talking about, who wants to stay in the market or who wishes to stay here for a longer time, when he or she sees red all over, whether it's the international markets or the Indian indices which are completely red, what would you tell that investor? What would your message be to that investor? That the policy of hold is good right now? Or how exactly can we just negate those panic vibes which are there in the investors right now?
See, investment is a behavioral component. So even if I say something that in a general way, hold is comparatively a preferred one in this present environment, not necessarily everyone will be interested to hold with, because your inner instinct will start, you know, hitting you, and you will have to look for some profit or immediately moving into it. Because a good investment requires patience, and that patience is needed. When you were giving the glimpse of that geopolitical tensions, since it has been now more than a year in the even Israel side, and more than 2 years it is in the Russia side, you will find out market has already digested these things. Until unless some mega, you know, event takes place, something very dangerous event takes place, that will be having a reaction. But otherwise, these things has already been discounted in the market. So market is already known, and that's why you'll find out even if the market movement you were, you know, mentioning, it is more or less a flat market. We can't have the complete, you know, whatever the yesterday's closing price should be today's closing price.
True that.
And I mean, that is there means market is dead. And we don't want market dead, because no movement in the line is actually line of the death. Is
there. Absolutely.
So that's why if that movement is there. Yes, keeping that in mind, ultimately, if anyone is looking for longer investment, right time to enter in the market, and thinking for holding it, not basically to And we can't suggest anything for trader.
जी, रुपए पे नजर डालते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले 84.07 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स अंतरदिवसीय कारोबार के दौरान 104.16 पर कारोबार कर रहा था। बिजवा जी, रुपया लगभग निरंतर 84 रुपए के आसपास बना हुआ है, बल्कि उससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसके पीछे क्या कारण है कि रुपया लगभग लोएस्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है?
अगर लॉन्ग टाइम हॉरिजन में आप देखेंगे तो रुपया जो है वो बहुत ही स्थिर स्वभाव दिखा रहा है, और ये आपके इकोनॉमी के स्थिरता को दिखा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, रुपया का बहुत ज़्यादा मूवमेंट, रुपया अगर ये 85-86 हो जाए तो भी चिंता के विषय है, और अगर ये आज 80 पे आ जाए तो भी चिंता का विषय है, क्योंकि ये दोनों तरफ से इकोनॉमी को इफेक्ट डालता है। अगर ये रुपया आपका 80 की तरफ जाने लगेगा तो हमारे एक्सपोर्ट को इफेक्ट डालेगा, और अगर एक्सपोर्ट को इफेक्ट डालेगा, जिस जो करंट अकाउंट को हम देखना चाह रहे हैं कि हम धीरे धीरे सरप्लस की तरफ बढ़ें, वो फिर हमारा सपना दूर हो जाएगा, एक अलग दबाव तैयार हो जाएगा, और अगर ये 85-86 जाएगा फिर वो दूसरे तरीके से दबाव तैयार करेगा। तो रुपया का स्थिर रहना अपने आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी बात है। और जो अगर मूवमेंट भी है, जो इसमें थोड़ा बदलाव है, 2 पैसे 4 पैसे 5 पैसे का 10 पैसे का बदलाव, 10 पैसे का बदलाव 84 रुपये 85 रुपये में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है
जी।
अगर इसका बड़ा मूवमेंट होता है तब इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो ये हमें एक तरह से कहिए स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, और हमें इस पे थोड़ा आश्वस्त होने की जरूरत है
जी।
बहुत अच्छा है
जी।
Mr. Kumar, we've always seen that whenever FPIs, the foreign portfolio investors, whenever they are pulling out of Indian markets and the Sensex is declining, whether it's marginally or a little more, domestic investors come to the fore and they come to the rescue, in a sense that they pour in more money. And we've continuously seen the domestic investors put in more money and more trust in the Indian markets and the Indian companies, and that has kind of kept our markets and our economic situation very stable. Do you believe that these the FPOs, which are continuously taking out the dollars from Indian markets, this will continue, or this is just a very small phase? Because they have continuously said that they believe in the India story. They believe that India can not just be a 5 trillion economy, but also go ahead from that.
You look into this, you are touching upon the global issues. See, India's fundamental is well in place, no doubt in that. And that has been tested time and again now, even in the market movement. Whatever the negative impact is there in the market aspect, you find out that the kind of movement, or even if the downfall is there, which is just in a limited way, not very big one. Now come to some positive part is there in the rest of the world. Because of that, FPI will be pulling out. But Indian financial market is deepening. And in that deep investment concept, right now our market is getting stronger and stronger. And if your market, see what is happening, it is a portfolio concept. Here also we have to view. So it is not foreign portfolio, overall investors portfolio. And who are investors? I'm not talking about investor portfolio in the holding of the financial instrument. I'm talking about the profile of the investors. And a profile of investors, one is pulling out money and another is pumping in money. Absolutely. And ultimately market is balanced. That is a classical example of a balanced portfolio. So it is a only rebalancing rather than making any kind of change. And we should be happy enough if domestic is really participating and any kind of movement by the foreigners is getting nullified, negated by the domestic investor, that's a matter of celebration. And I'm very happy of that, because I have seen the market when I was as a, you know, economic analyst, market analyst, I used to compel to say these since indicators like Sensex is an indicator of Indian investor or foreign investor. Because if they are moving, market is down, they are coming, market is up. So we had no role. Fortunately, in now, around half a decade time itself, it has been proven that Indian indicator is now more Indian indicator, not the foreigners indicator.
So it's actually great that the domestic investors are coming to the fore, and they are taking charge of the markets.
Very correct. And even if it might be possible, individual investor may be a retailer in nature, but we are populous country, number one population. So no problem. 1:3 ratio, 1:5 ratio, we are taking care of it. One will be pulling out, five will be putting in, and ultimately market is balanced, and rather we will be making market up.
Surely.
जी, विजय जी जैसा आपने बताया और वैभव ने भी जैसी अभी बात करी FPIs और DIIs के बारे में, हम लगातार हर दिन के आंकड़े अगर हम देख रहे हैं तो जितनी सेलिंग चल रही है लगभग उसके या उसके आसपास की जो है बाइंग भी DIIs की तरफ से हो रही है। मैं अपने सवाल पे आता हूँ कि कई सारे आम निवेशकों का बीते कुछ दिनों में जो है रुचि जो बनी थी वो डिफेंस सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा रुचि थी, और हम खास तौर पे कुछ स्टॉक्स में देखें डिफेंस सेक्टर के तो 50% तक वो जो है लगभग करेक्शन आ चुकी है और अभी भी मार्केट जो है अपने हाईज से इतना ज़्यादा नहीं टूटा है, तो वो एक डर की स्थिति में है कि यहाँ पे एवरेज आउट करें या फिर थोड़ा और मार्केट के नीचे जाने का इंतज़ार करें, तो इस स्थिति में आम निवेशक क्या करें, इस पर आपकी क्या सलाह रहेगी?
यही थोड़ी देर पहले यही प्रश्न जी था दूसरे रूप में कि आम निवेशक क्या करें। मेरा यहाँ मानना है कि ये जो मार्केट है इसमें फंडामेंटल स्ट्रेंथ है
जी।
और फंडामेंटल स्ट्रेंथ होने के कारण जो मूलभूत इसमें जो शक्ति निहित हो गई है, ये लॉन्ग रन के लिए अगर जितने इन्वेस्टर हैं वो एवरेज आउट करना शुरू करें और अपने पोजीशन को और फर्दर स्ट्रेंथन करें, सब्जेक्ट टू दैट उनको कभी भी लिवरेज करके इन्वेस्टमेंट ना करें ताकि वो स्ट्रेस बढ़ावे।
बड़ी सलाह है,
लिवरेज करके ना करें। अगर आपके पास फंड है तो आप इन्वेस्ट करें, नहीं है तो जो पोजीशन है उसको होल्ड करके रखें, इट विल गिव देम अ बेटर रिटर्न। एंड ये जो इशू है, चैलेंजेस हैं, ये धीरे धीरे सेटल करेगा और ये सेटलमेंट इकोनॉमिक ऑर्डर को भी सेटल करेगा दोनों तीनों तरीके में। ऑफकोर्स डिफेंस भी है, सेकेंड आप एनर्जी सेक्टर भी देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले FMCG की भी बात कर रहे थे। और जब आपकी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रहा है तो आपके मोस्ट ऑफ द एक्टिव सेक्टर्स जो हैं वो बेहतर परफॉर्म करेंगे
जी। आने वाली जो रैली होगी, जो अब अगली रैली होगी, उसमें आपको कौन से सेक्टर्स लग रहे हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं?
देखिए, जो फ्यूचर है वो फ्यूचर तो टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंड करने जा रहा है
जी।
और टेक्नोलॉजी अब एक सेक्टर नहीं रह गया है, टेक्नोलॉजी एक इंटीग्रेटेड पार्ट हो गया है सारे सेक्टर का। और जब सारे सेक्टर का इंटीग्रेटेड पार्ट हो गया है तो ये अपने बल पे तो बढ़ेगा ही, औरों के बल पे भी बढ़ेगा।
इट इज लाइक अ कॉमन थ्रेड व्हिच इज कंबाइनिंग ऑल द अदर इंडस्ट्रीज
ऑल एंड बिकमिंग द नीड ऑफ वन एंड ऑल, वेदर इट इवन इंक्लूडिंग सर्विस सेक्टर, they will be highly depending on technology, and since it is that, certainly anyone directly and indirectly related will have a bright future.
जी, अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज 6,798 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत की 2 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य आवागमन की लागत कम करने और लोगों को यातायात की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पहली परियोजना के अंतर्गत नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर की 256 किलोमीटर लंबी 2 रेल लाइन बिछाई जाएंगी। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने अमरावती के रास्ते इरुपलम और नामबोरू के बीच एक नई रेलवे लाइन के निर्माण की भी अनुमति दी है।
अमरावती के लिए रेलवे कनेक्टिविटी करने के लिए एक नई लाइन 57 किलोमीटर की 2,245 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से बनेगी। कृष्णा रिवर पे एक नया ब्रिज बनेगा। दिस प्रोजेक्ट इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट। दिस विल प्रोवाइड डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी टू हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, नागपुर एंड वाया नागपुर टू दिल्ली एंड वाया हैदराबाद टू मुंबई।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्पित 1,000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को भी मंजूरी दी है। प्रस्तावित वेंचर कैपिटल फंड को फंड संचालन की अवधि से 5 साल तक बढ़ाए जाने की योजना है। ये फंड रणनीतिक रूप से भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को आगे बढ़ाने, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।
So two major approvals that have been done by the cabinet regarding the railway projects of almost 6,800 crore rupees, inclusivity, connectivity, greater logistics and making India into a space hub, a manufacturing hub, a tourism hub, a medicinal hub. How are the the decisions that have been taken right now, how will they have a great multi-pronged approach towards the benefits that they will entail for the nation as well as the people? And how do you feel that these decisions are more far-reaching than just being for a couple of years to come?
See, whenever we talk about infrastructure, one thing, whether it is railway, whether it is roadways, whether it is portways, whatever it is there, or even airways, or even software infrastructure, infrastructure is the backbone of economic development. And I'm reminded with one of the very, you know, around a two decade back research had been there, which was published through World Bank. And that research was mentioning that if you have a 4% growth in infrastructure, that will lead to 1% GDP growth. So you can look into that quantum of exercise which is there. Saying so, relationship, one very interesting point I'll take. It is not only the railways, it is railways in which location. And you'll see what the government priorities is putting into these infrastructure, into those areas which are laggards otherwise. So putting laggards to enabling them is actually a very, very big, you know, far-sighted approach of making India robust in that economic front. And without saying it goes that if those who are not able to perform will start performing, your team is going to be like anything. And this is what the strength of India.
Absolutely. And talking more about infrastructural development, which has been the cornerstone of the incumbent government, let's move over to our next story, wherein in a significant move to strengthen rural connectivity and accelerate economic growth in the northeastern region, the Ministry of Rural Development has sanctioned road length of 55.89 kilometers under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Part 3, with an estimated investment of over 54 crore rupees to the state of Nagaland. The ministry has also sanctioned construction of 88 roads and 55 bridges under PMGSY Part 3 with an estimated investment of 1,056 crore rupees to the state of Meghalaya. The ministry said that these steps were taken to improve access to essential services like healthcare, education and markets, enhance connectivity in rural areas, bridge the gap between remote villages and urban centres, foster economic development, trade and commerce in the region, and create employment opportunities and stimulate local economies.
Kumar ji, lagatar infrastructure par is tarike ki investments ki ja rahi hain aur abhi Vaibhav ne bhi bataya aaj do pariyojanaon ko bhi cabinet ki manzoori jo mili hai. हम देखते हैं लगातार प्रधानमंत्री आकाशवाणी के जरिए मन की बात में भी जब वो स्पेस सेक्टर के ऊपर बात करते हैं तो ये उनकी प्रतिबद्धता दिखाता है सरकार की. और जब स्पेस सेक्टर की बात होती है, चाहे 1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड और आगे भी आने वाले समय में इसमें और इन्वेस्टमेंट आने वाली है, तो इसमें आप किस तरह देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर यह भारत की स्थिति को कैसे दर्शाता है?
इनेबलर है अपने इंडियन इकोनॉमी के लिए. देखिए, अभी तक स्पेस सेक्टर में हम ये दूर तक सोचते रहे थे कि स्पेस सेक्टर का मतलब होता है सिंपली जब मिसाइल ऊपर गया या आपके जो और दूसरे जो आप सैटेलाइट वगैरह डालते हैं ये देखा जाता है. लेकिन यहाँ पे है क्या कि ये पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है
जी.
पूरा का पूरा इन्वायरमेंट, ये आज जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करने से लेके ये स्पेस सेक्टर इतना ज़्यादा छोटे छोटे कंपोनेंट्स, जब आप इंडिजिनस करते हो तो ये एक स्पेस सेक्टर में कम से कम सैकड़ों स्टार्टअप मेरे नॉलेज में है जो स्टार्टअप आ चुका है जो उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है और छोटे छोटे कंपोनेंट से लेके उनकी पॉसिबिलिटीज को बना रहा है. स्पेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ बड़ा वाला स्पेस इन्वायरमेंट नहीं, और ड्रोन से लेके उसके पार्ट से लेके सर्विस डिलीवरी एवरीथिंग यू टॉक अबाउट, आप देखेंगे कि एप्स जो हैं, एप्स बनाने में और इन सब सेगमेंट के लिए आज एक इकोसिस्टम रेडी हो रहा है. और वो इकोसिस्टम को फंडिंग चाहिए. फंडिंग अभी तक फिलेंथ्रोपिक एंड अदरवाइज चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन इसको न सिर्फ फंड प्रोवाइड कर रहा है बल्कि पूरे सेक्टर को मोटिवेट कर रहा है. और अदर पीपल इंक्लूडिंग सीएसआर फंडिंग्स एंड अदर्स ये भी सामने आ रहे हैं ताकि ये सेक्टर ओवरऑल इकोनॉमी को प्रोग्रेस में डाले. आईटी के लिए इसका सपोर्ट बहुत जरूरी है
जी. आइए नजर डालते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर। एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। हांगकांग का हैंगसेंग 1.3% के घाटे में रहा। दक्षिण कोरिया का बाजार कॉस्पी में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.5% से अधिक फिसला, जबकि सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम इंडेक्स और जापान के निकेई सूचकांक में 0.1% से अधिक की वृद्धि देखी गई। ज्यादातर यूरोपीय बाजारों में आज बढ़त का रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक और जर्मनी का डैक्स 0.7% से अधिक की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे और लंदन का फुटसी 0.4% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था।
US stocks ended lower yesterday amid rising treasury yields and selling in mega cap stocks. Benchmark 10-year US treasury yields have risen to a 3-month high, resulting in less confidence among investors regarding the Federal Reserve's outlook on potential rate cuts in the coming months. The Nasdaq composite dipped more than 1.5% and Dow Jones Industrial Average and S&P 500 both declined nearly 1%. Joyce, what exactly is the sentiment in the international market? If we are talking about that, we've seen that there are too many factors which are creating uncertainties in the minds of investors. We've talked about India. We've seen that the potential of growth is absolutely there. And the basics, the foundation is very strong. What about the international market right now?
International market right now, is everyone is looking right now, specifically when we talk about US, and everyone is looking towards US election, their possibility of a result, and then how they are going to take it further. Not only that, even after that result outcome, Fed also has to meet whether Fed will continue their exercise or Fed will stop there, what way they are going to make it. Will there be a rate revision further, that, you know, downing the rate, cutting the rate will be continuing or it will be, you know, getting some halt? These are the certain questions which is really, you know, a question of relevance. But it will be only when time is going to unfold these things, and uncertainty, latest news in the uncertainty is also deciding that US is not going to have clarity.
And in some more news, Finance Minister Nirmala Sitharaman chaired the Roundtable on Disaster Resilient Infrastructure on the sidelines of the World Bank and IMF annual meetings in Washington, D.C., USA last night. The Finance Ministry mentioned that during the meeting, Finance Minister stressed on the danger of the development gains being undercut by increasing climate-induced risks to infrastructure and the critical services it supports. The minister also participated in the Global Sovereign Debt Roundtable on the sidelines of the World Bank and IMF annual meetings. During the meet, she called for a deeper dialogue to help countries meet debt obligations without compromising critical investments. Oil prices rose today as concern over potential oil supply disruption heightened amid escalating geopolitical conflicts. Brent crude was trading 0.43% up at $75.28 per barrel, and WTI crude gained over 0.5% to trade at $71.13 per barrel when the reports last came in.
सोने और चांदी पर भी नजर डाल लेते हैं। सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.65% बढ़कर 78,560 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.97% बढ़कर 98,220 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। बिजॉय जी, एक छोटा सा कमेंट आपका सोने और चांदी को लेकर के।
ऑल टाइम बेस्ट इन्वेस्टमेंट, स्पेशली इन द कंडीशन ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन।
जी, और श्रोताओं, वक्त है आज की इस चर्चा को यहीं विराम देने का। स्पर्श और वैभव को अनुमति दीजिए। कुमार जी, मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
और अंत में अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं एक बार फिर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
Yes, Sparsh, before we close, a reminder of the headlines. Domestic benchmark indices end with marginal losses. Sensex ends flat. Nifty settles below 24,400. Cabinet approves two railway projects of more than 6,750 crore rupees. Also approves establishment of 1,000 crore rupees venture capital fund for space sector. And global crude prices rise amid concerns over potential oil supply disruption. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, namaskar.
Namaskar.
Market Mantra. market.